नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमता के प्रति आकर्षित है। स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर गुजरात के वड़ताल में आयोजित समारोह को संबोधित किया। झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन, सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज से अजरबैजान में बाकू में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया फिल्मकार फिलिप नॉइस को इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमता के प्रति आकर्षित है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा है कि उनके देश में कुशल जनशक्ति भारतीय युवा काम करे। श्री मोदी आज सवेरे गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की वैश्विक मांग और बढ़ने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना होगा और कुशल युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि सरकार ने इस अवसर पर 200 रुपये का चांदी का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण द्वारा स्थापित वड़ताल धाम की आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा है। श्री मोदी ने कहा कि यह अवसर लोगों के लिए भारतीय संस्कृति के शाश्वत प्रभाव का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के दृष्टिकोण को अपनाने और अगले 25 वर्षों में इसे हासिल करने में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कुशल श्रमिकों की एक नई पीढ़ी विकसित करने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास, नशामुक्ति और आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता के मिश्रण से नई पीढ़ी तैयार करने जैसे क्षेत्र में स्वामी नारायण पंथ के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। अपनी सरकार के मूल दर्शन, विकास भी विरासत भी को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी विरासत को संरक्षित किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। श्री मोदी ने भारत के लोगों और आध्यात्मिक नेताओं से देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। गुजरात के खेरा जिले में वड़ताल मंदिर के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए देशभर से 1000 तीर्थ यात्री वहां पहुंचे। इस महोत्सव की शुरुआत इस महीने की 7 तारीख को पोथी यात्रा और कलश यात्रा के साथ हुई थी और ये 15 नवंबर तक चलेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने की 13 तारीख को मतदान होगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के तेज विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड वन और खनिज संपदा से समृद्ध है। साधन संपन्न राज्य होने के बावजूद गैर भाजपा सरकारों ने झारखंड की जनता को गरीब बनाए रखा। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में समृद्धि के बावजूद विकास का अभाव है और बेरोजगारी चरम पर है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार और झारखंड की अमूल्य प्राकृतिक संपदा की बड़े पैमाने पर लूट है। पार्टी के संगठनात्मक क्षमता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा खुद संगठन पर आधारित है, इसलिए हमारा चुनाव लड़ने का तरीका संगठन और कार्यकर्ताओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज झारखंड की जनता देख रही है कि उनके अधिकतर वादे झूठे हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि एनडीए कार्यकाल में झारखंड के हितों की भी अनदेखी की गई है। पलामू में हुसैनाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने एनडीए सरकार पर राज्य की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाया। इस बीच आज से मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि संवेदनशील माने जाने वाले 5 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा और गुमला के 225 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी भेजे गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि मतदान अधिकारियों के आने जाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अन्य मतदान कर्मियों को कल मतदान केंद्र पर भेजा जाएगा। इस चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्र में बुधवार को मतदान होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य लोग शामिल हुए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में टेलीफोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन के साथ उसके संघर्ष को किसी भी तरह से बढ़ने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने तनाव कम करने और 2.5 साल से चल रहे इस संघर्ष को सुलझाने के लिए रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में रुचि दर्शाई। अमरीकी मीडिया के अनुसार श्री ट्रंप ने यूरोप में पर्याप्त अमरीकी सैन्य उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि वह यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर अमरीकी प्रभाव डालने का इरादा रखते हैं। इससे पहले बुधवार को श्री ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमरीका के नए प्रशासन के साथ सहयोग की आशा व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 आज अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। 2 सप्ताह के इस कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित और संवेदनशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत ने वैश्विक जलवायु वित्त ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत बाकू में जलवायु वित्त के लिए एक नए लक्ष्य की तलाश करेगा, जो 2009 में निर्धारित पुराने $100 अरब के वार्षिक लक्ष्य से बहुत अधिक है। 2030 पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को लगभग $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि IFFI के लिए फिल्म निर्माताओं और दर्शकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। डॉ मुरुगन ने कहा कि ये विश्व के सबसे बड़े फिल्म महोत्सवों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष का मुख्य ध्यान युवा फिल्म निर्माताओं पर है। उन्होंने बताया कि नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ भारतीय नवोदित निर्देशक पुरस्कार भी शुरू किया गया है। श्री जाजू ने कहा कि इस साल फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है और महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की फिल्म बैटरमैन के एशिया प्रीमियर के साथ होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को दिया जाएगा। श्री जाजू ने कहा कि इस वर्ष इस फिल्म महोत्सव में 101 देशों से 1,674 प्रविष्टियों प्राप्त हुई है। महोत्सव के लिए 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का चयन किया गया है। बिहार के राजगीर में महिला हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा है। जापान की ओर से माहो उएनो और साकी तनाका से, जबकि कोरिया की तरफ से मियांग पार्क और यूजिन ली ने गोल किया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में मेजबान भारत जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और चीन सहित 6 थीम में भाग ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। के राजगीर नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल परिसर में ये अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहा है। 10 दिन के खेलों में फाइनल सहित 20 मैच होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।